नमस्कार श्रोताओ, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। इसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत के समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है उनके पास खास। इसके अलावा खेल जगत की गतिविधियों पर भी हमारी नजर रहेगी और उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी हम याद करेंगे जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस। तो श्रोताओं, परिक्रमा की संघ के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अनीता आनंद। अनीता, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार मुकेश। हेलो, गुड आफ्टरनून। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM। फॉर ऑल ऑफ यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, आवर डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, बिजनेस ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दिस ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स एंड वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट।
जी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार दिल्ली के निगम बोध घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया।
President, Vice President and Prime Minister, other dignitaries and leaders from across political spectrum pay their last respects to Dr. Singh.
Grih Mantralay ne kaha, Kendra Sarkar Dr. Manmohan Singh ke smarak ke liye jagah aavantit karegi.
Two people killed after being struck by a train near Palghar railway station in Maharashtra while crossing the railway track.
Mausam Vibhag ne Madhya Pradesh mein aaj aandhi aur ola vrisht ka anuman vyakt kiya.
And time now for a segment Deadline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global levels. Today we will talk about last rites of former Prime Minister Dr. Manmohan Singh and Mission Mausam. The mortal remains of former Prime Minister Dr. Manmohan Singh were consigned to flames with full state honours at the Nigam Bodh Ghat in Delhi today. Sikh priests and family members of Dr. Singh recited verses from Gurbani before the last rites. After the ceremonial guard of honour, President Draupadi Murmu, Vice President Jagdeep Dhankar, Prime Minister Narendra Modi, Union Ministers Rajnath Singh, Amit Shah and Jagat Prakash Nadda and Lok Sabha Speaker Om Birla paid their last respects to the former Prime Minister at the Nigam Bodh Ghat. Besides several leaders from the Congress Party, including Party President Mallikarjun Kharge, Sonia Gandhi and Rahul Gandhi offered their tributes. Chief of the Army Staff General Upendra Dwivedi, Chief of the Naval Staff Admiral Dinesh K. Tripathi, Chief of the Air Staff Air Chief Marshal Amarpreet Singh, King of Bhutan Jigme Khesar Namgyal Wangchuk and former Minister of Mauritius Dhananjay Ramphal also paid tributes to Dr. Manmohan Singh.
पूर्व प्रधानमंत्री की अंतिम यात्रा कांग्रेस मुख्यालय से शुरू होकर निगम बोध घाट तक पहुंची। इससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर उनके आवास से दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय लाया गया। बृहस्पतिवार की रात 92 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री के निधन से देश को गहरा दुख हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर सिंह का जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण है कि कैसे लोग संघर्षों से ऊपर उठकर नई ऊंचाइयां हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी शोक व्यक्त किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल उनकी याद में शोक प्रस्ताव पारित किया और 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी।
नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, डॉक्टर सिंह वॉज द प्राइम मिनिस्टर फॉर 2 terms इन द कांग्रेस लेड यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस गवर्नमेंट फ्रॉम 2004 टू 2014। बोर्न इन 1932, डॉक्टर सिंह स्टडीड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इन द यूके, वेयर ही earned a first class honours degree in economics in 1957. He also had a degree in economics from Newfield College at Oxford University. Dr. Singh became a member of the Rajya Sabha in 1991 and was the leader of the opposition between 1998 and 2004. He was awarded India's second highest civilian honour, the Padma Vibhushan, in the year 1987.
सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री की स्मारक के लिए एक जगह आवंटित करने का निर्णय लिया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि सरकार को इस संबंध में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से अनुरोध मिला है। मंत्रालय ने कहा कि कल केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह ने श्री खड़गे और डॉक्टर सिंह के परिवार को बताया कि सरकार स्मारक के लिए जगह आवंटित करेगी। और पंजाब के अमृतसर में हिंदू कॉलेज ने अपने प्रतिभाशाली पूर्व विद्यार्थी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। शिक्षकों, छात्रों तथा पूर्व छात्रों और राजनेताओं ने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी। हिंदू कॉलेज के प्रधानाचार्य संजय खन्ना ने कॉलेज परिसर में डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्मारक बनाने की घोषणा की। डॉक्टर मनमोहन सिंह हिंदू कॉलेज के बैच 1951 से 1953 के बीच विद्यार्थी रहे थे.
And now moving on to our next topic of Dateline India, Mission Mausam. With its diverse geography and climate, India is heavily influenced by weather and monsoon patterns. Recognizing the critical need for accurate weather forecasting, especially in a country where agriculture is a primary livelihood, the government has launched Mission Mausam, a landmark initiative by the Ministry of Earth Sciences, with a budget of 2,000 crore rupees over 2 years. Designed to position India as a global leader in weather and climate sciences, the mission aims to make the nation weather ready and climate smart, meeting the global standards. Mukesh.
जी बिल्कुल. इसका उद्देश्य मौसम और जलवायु सेवाओं में सुधार करना, कृषि आपदा प्रबंधन और ग्रामीण विकास सहित कई क्षेत्रों के लिए समय पर और सटीक अवलोकन, मॉडलिंग और पूर्वानुमान की जानकारी सुनिश्चित करना है. मंत्रालय द्वारा अपने प्रमुख संस्थानों भारत मौसम विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय मध्यम दूरी के मौसम पूर्वानुमान केंद्र और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के माध्यम से इस पहल को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सहयोगी निकायों जैसे भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र और राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा समर्थित किया गया है.
And also, Mukesh, through collaboration with national and international research institutions, academia and industry, Mission Mausam aspires to revolutionize India's weather and climate services while cementing its global leadership in this critical field. The initiative leverages cutting-edge technology, including high-resolution models and supercomputing systems, to provide accurate forecasts on various timescales ranging from short-term hours to seasonal predictions.
बिल्कुल. अब बात यह आती है कि मिशन मौसम की आवश्यकता क्यों पड़ी. जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा का स्वरूप अनियमित हो गया है, जिसके कारण किसानों की असुरक्षा बढ़ गई है. सटीक मॉनसून पूर्वानुमान, बुआई की अवधि, सिंचाई योजना और फसल उपज की भविष्यवाणी को अनुकूलित करने में इससे सहायता मिलती है. इसीलिए मिशन से कृषि अर्थव्यवस्था को काफी सहायता मिलेगी. दूसरे, मिशन आपदा तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. भारत को अक्सर चक्रवात, बाढ़ और सूखे जैसी चरम मौसमी घटनाओं का सामना करना पड़ता है. उन्नत पूर्वानुमान क्षमताएं जीवन बचाएंगी और आर्थिक नुकसान को भी कम करेंगी. अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि बेहतर मौसम सेवाएं, जल संसाधन प्रबंधन, पशुधन संरक्षण और बुनियादी ढांचे की योजना में सहायता करके ग्रामीण समुदायों का समर्थन कर सकती हैं. कुल मिलाकर मिशन मौसम ग्रामीण विकास को गति देगा.
जी. And time now to go over to our correspondents. 10-day-long Losar Christmas and New Year are going on in Ladakh. The celebrations are being organized at the main market Leh from 22nd of December, and this will conclude on 2nd of January 2025. We have a report from our correspondent.
Losar is an important festival of Ladakh. The celebrations of Losar in Ladakh continue for 10 to 15 days. This Buddhist festival falls about the time of the winter solstice, any time between 8th and 30th December. Losar is one of the top festivals in Ladakh and celebrated with a grand manner. During the festival, people gathered at sacred places, perform folk dance and music. Special ceremonies are also held in different monasteries of Ladakh on Losar, and the ambience is quite delightful. During the festival days, houses are cleaned before the festivity begins and various food preparations are done that are then shared with loved ones. Offerings are made to Buddhist gods and goddesses both at home and at the monasteries during Losar. A procession called Metho on the eve of Losar is carried out through the streets, markets and lanes, where people chant sacred slogans and carrying flaming torches. People believe that the chant and the fire will ward off all the evil spirits. For Parikarma, this is Khurshid Yusuf from Leh Ladakh.
और लद्दाख की पहाड़ियों से अब चलते हैं पश्चिम बंगाल की पहाड़ियों. जी हां, दार्जिलिंग चलते हैं. दार्जिलिंग में इन दिनों उत्सव का माहौल है. यहां पर मेलो चाय महोत्सव, गोरखा मेला, गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है. तो आइए चलते हैं हमारे संवाददाता अशोक चौरसिया के पास, जो एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं.
पश्चिम बंगाल के पर्वतीय इलाका दार्जिलिंग हिल में एक तरफ सर्दी बढ़ती जा रही है, पारा गिरकर 7 से 10 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है, तो दूसरी तरफ महत्वपूर्ण पहाड़ी क्षेत्र में उत्सव का माहौल है. सभी विद्यालयों में करीब 1.5 महीने की छुट्टियां हो गई हैं. दार्जिलिंग, कर्सियंग, मिरिक, कालिम्पोंग, सिलीगुड़ी, डुअर्स आदि के विभिन्न इलाकों में कहीं मेला, कहीं साहित्यिक गोष्ठियां, कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम, कहीं क्रिसमस, कहीं फुटबॉल का आयोजन हो रहा है. वही दूसरी तरफ पहाड़ के सभी पर्यटक स्थलों देश विदेश के पर्यटकों से भरा पड़ा है। पर्यटक सर्दी हिमपात तथा दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के जॉय राइड का आनंद ले रहे हैं। गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन जीटीए का मुख्यालय दार्जिलिंग में चाय व पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक मेगा मेलो टी फेस्ट का आयोजन इसी सप्ताह के आरंभ में किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में देश विदेश के पर्यटक, बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। दार्जिलिंग पुलिस तथा गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन द्वारा आयोजित इस मेगा फेस्ट के अंतिम 21 किलोमीटर लंबा हिल मैराथन का आयोजन किया गया। इस मैराथन में केनिया, इथियोपिया, नेपाल तथा भारत के कई राज्यों के करीब 3,500 से अधिक धावकों ने भाग लिया। इसी क्रम में 3 दिन का गुंदरी बाजार का आयोजन दार्जिलिंग के चौरस्ता में आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य था स्थानीय उद्यमियों के उत्पादों को प्रोत्साहन देना। दोनों कार्यक्रमों में दार्जिलिंग के जिला पुलिस अधीक्षक प्रवीण प्रकाश स्वयं उपस्थित थे। इसी क्रम में पहाड़ के चारों महकुमा तराई डुअर्स में यहाँ के प्रसिद्ध कवि अगम सिंह गिरी की जयंती साहित्यिक कार्यक्रमों के साथ 27 दिसंबर को मनाई गई। विगत 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक सिलीगुड़ी के सुकना में भव्य गोरखा मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें नेपाली जातीय व्यंजनों, पोशाकों, कला संस्कृति तथा उत्पादों के 56 स्टॉल लगाए गए हैं तथा हर रोज शाम को भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। 31 दिसंबर को नेपाली जगत के एक प्रसिद्ध गायक का संगीतमय संध्या का आयोजन किया गया है, जिसमें नव वर्ष 2025 का स्वागत किया जाएगा। सुकना में ही भारत के फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान भाईचुंग भुटिया द्वारा सुकना गोल्ड कप फुटबॉल का आयोजन 5 जनवरी से किया गया है, जिसमें भारत के विभिन्न राज्यों की प्रमुख टीमों के भाग लेने की संभावना है। परिक्रमा के लिए अशोक चौरसिया, आकाशवाणी कर्शियांग।
और अनीता, अब हमारे श्रोताओं को एक और पहाड़ी स्थल पर ले चलते हैं।
जी, वी आर टेकिंग देम ओवर टू उत्तराखंड, विच हैज विटनेस स्नो फॉल इन सेवरल ऑफ इट्स माउंटेनस रीजन्स, विद हेवी स्नो रिपोर्टेड इन एरियाज एट हायर ऑल्टीट्यूड्स। मूव फ्रॉम आवर कॉरेस्पॉन्डेंट साक्षी सिंह।
टुडे फ्रेश स्नोफॉल हैज ब्लैंकेटेड पाथ।
हाँ, उत्तराखंड ही नहीं, करगिल में भी भारी बर्फबारी के कारण सड़क संपर्क अवरुद्ध हुआ है। परिणाम स्वरूप 2 राजमार्ग बंद हो गए हैं। इनमें करगिल को श्रीनगर से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और करगिल को जांस्कर से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 301 शामिल है। करगिल के उपायुक्त श्रीकांत सुसे ने आश्वासन दिया है कि सभी प्रमुख सड़कों को जल्द से जल्द साफ कर दिया जाएगा। स्थिति पर नजर रखने और लोगों की चिंताओं को दूर करने के लिए 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। बताया जा रहा है कि जिले में खाद्य, ईंधन और दवाओं सहित आवश्यक आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।
The Indian Meteorological Department has forecast thunderstorms accompanied with hailstorms over Madhya Pradesh today. Scattered rainfall is likely over Punjab, Haryana, Chandigarh, Uttar Pradesh and Rajasthan. According to the Met Department, similar conditions are expected to prevail over Vidarbha, Maharashtra and Gujarat today. It has forecast dense fog conditions during the late night and early morning hours over Rajasthan, Himachal Pradesh, Punjab, Haryana, Chandigarh and Uttar Pradesh for the next 2 to 3 days.
और मध्य प्रदेश में ई मंडी योजना का विस्तार प्रदेश की अन्य मंडियों में भी किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये योजना 1 जनवरी से 41 और मंडियों में लागू हो रही है।
सरकार ने अगले साल अप्रैल तक सभी 259 मंडियों को ई मंडी में बदलने का लक्ष्य रखा है। ई मंडी योजना के तहत मंडी परिसर में प्रवेश से लेकर नीलामी, तौल और भुगतान तक की कार्यवाही कंप्यूटरीकृत होगी। मंडी में किसानों द्वारा बेची जा रही कृषि उपज का रिकॉर्ड भी वास्तविक समय पर ऑनलाइन उपलब्ध होगा। इससे मंडियों में भीड़ भाड़ कम होगी और किसानों को सुविधा भी होगी। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
एंड हियर नाउ इज द रिपोर्ट बाय साक्षी सिंह।
टुडे फ्रेश स्नोफॉल हैज ब्लैंकेटेड पार्ट्स ऑफ उत्तरकाशी, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली, पौड़ी, नैनीताल एंड देहरादून एट एलिवेटेड एल्टीट्यूड्स। मीनवाइल द प्लेन्स आर एक्सपीरियंसिंग मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल। दिस हैज लेड टू सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन टेम्परेचर्स अक्रॉस द स्टेट। द मेट डिपार्टमेंट हैज इशूड अ येलो अलर्ट फॉर हैवी रेनफॉल इन ऑल हिली एरियाज अबव 2500 मीटर्स एक्सेप्ट फॉर टेहरी, गढ़वाल, अल्मोड़ा एंड चंपावत। देर इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी ऑफ हेलस्ट्रॉम इन सम पार्ट्स ऑफ द रीजन। इन रिस्पॉन्स टू द वेदर वार्निंग, द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बागेश्वर एंड चमोली हैव डिक्लेयर्ड हॉलीडेज फॉर all schools and Anganwadi centers today. It may be noted that the Met Department forecasts that the weather is expected to clear up in most parts of the state tomorrow. Sakshi Singh, Akashwani News, Dehradun.
और अब कुछ रक्षा जगत के समाचार भी अपने श्रोताओं को बता देते हैं। भारतीय सेना की 334 कर्मियों वाली टुकड़ी आज बटालियन स्तरीय संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 18वें संस्करण में भाग लेने के लिए रवाना हुई। यह अभ्यास इस महीने की 31 तारीख से अगले महीने की 13 तारीख तक नेपाल के सल झंडी में आयोजित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस अभ्यास का उद्देश्य जंगल युद्ध, पहाड़ों में आतंकरोधी अभियानों और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंतर्गत मानवीय सहायता और आपदा राहत में अंतर संचालन क्षमता को बढ़ावा देना है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि परिचालन तैयारियों, विमानन पहलुओं, चिकित्सा प्रशिक्षण और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मंत्रालय ने यह भी कहा कि अभ्यास भारत और नेपाल के बीच मित्रता, विश्वास और साझा सांस्कृतिक संबंधों के मजबूत बंधन को प्रदर्शित करता है। और अब खेल जगत की खबरों के बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। तो अनीता, खेल की जगत में क्रिकेट से क्या समाचार है आपके पास?
इंडिया वर 358 फॉर 9 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन देयर फर्स्ट इनिंग्स एट स्टम्प्स ऑन डे 3 or 4 टेस्ट ऑफ द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इन मेलबर्न। द विजिटर्स आर स्टिल ट्रेलिंग बाय 116 रन इन रिप्लाई टू ऑस्ट्रेलियाज फर्स्ट इनिंग्स टोटल ऑफ 474। स्टम्प्स वर ड्रॉन अर्ली टुडे ड्यू टू पुअर लाइट। इंडियन बैटर नीतीश कुमार रेड्डी scored his maiden test century. Nitish with impressive 105 and Mohammad Siraj with 2 were at the crease when the stumps were drawn today. The visitors resumed their first innings at the overnight score of 164 for 5 this morning. The 5-match series is currently tied at 1-1, Mukesh.
जी, और फुटबॉल की अगर बात करें तो इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में आज हैदराबाद में ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब और हैदराबाद फुटबॉल क्लब के बीच मैच खेला जाएगा। मैच शाम 5 बजे से शुरू होगा। एक अन्य मैच में चेन्नई में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई एफसी और बेंगलुरु एफसी का मुकाबला खेला जाएगा। और कल कोलकाता में मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब और ओडिशा एफसी के बीच मैच बिना किसी गोल के बराबरी पर समाप्त हुआ था। और बैडमिंटन में क्या खबर है आपके पास?
इंडियन एस शटलर लक्ष्य सेन विल टेक ऑन चाइनाज हू चे आन इन द सेमीफाइनल ऑफ द किंग्स कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन इन शेंचेन चाइना टुडे। द मैच इज शेड्यूल्ड टू बिगिन एट 5 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। लक्ष्य सेन करंटली रैंक 12th डिफीटेड हिज 17th रैंक्ड ओपोनेंट अंगज नंका लोंग 10-21, 21-13, 21-13 इन द क्वार्टर फाइनल यस्टरडे। द विक्ट्री मार्क्स लक्ष्य's फर्स्ट विन अगेंस्ट लोंग इन हिज 4 मीटिंग्स। द किंग कप डज नॉट ऑफर एनी रैंकिंग पॉइंट्स।
और हॉकी की बात करते हैं तो हॉकी इंडिया लीग आज से ओडिशा के राउरकेला में शुरू हो रही है। पहला मैच बिरसा मुंडा स्टेडियम में रात 8 बजे से एसजी पाइपर्स और गुना सिका के बीच खेला जाएगा। हॉकी लीग 2 चरणों में खेली जाएगी। पहले चरण के मुकाबले आज से 18 जनवरी तक चलेंगे, जिसमें सभी टीमों को आपस में एक एक बार खेलना होगा। दूसरा चरण 19 जनवरी से शुरू होगा। इसमें टीम 2 पूल में होंगी। प्रत्येक पूल में टीम आपस में खेलेंगी। दोनों पूल की जो 2 शीर्ष टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी। सेमीफाइनल मुकाबला 31 जनवरी को होगा और फाइनल मैच 1 फरवरी को खेला जाएगा।
And now for some more news. Zina, the 3-year-old tigress from Odisha's Simlipal Tiger Reserve, has been spotted near the jungles of Noinani village of Manbazar Block 1 in Purulia district of West Bengal. School and Anganwadi centers have been closed by the district authorities. The tigress has been relocated from the Taboda Andheri Tiger Reserve of Maharashtra into the Simlipal Tiger Reserve. It has traveled from Simlipal through Jharkhand into West Bengal. In Bengal, it first entered into the Jhargram district and then Purulia. Forest officials have taken all measures to capture it. The tigress has been travelling for more than 15 days. Meanwhile, it killed 5 domestic goats in Purulia Raika forest. And now we will... For some more news, Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashwani tomorrow. It will be the 117th episode of the monthly radio program and it will be broadcast on the entire network of Akashwani and Doordarshan, the AIR news website and the News on AIR mobile app. It will also be live streamed on YouTube channels of AIR News, DD News, PMO and INB Ministry. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. And now we take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
Between December the 28th and the 30th, 1883, The first national level conference of the organization, the Indian Association, was held in Kolkata. The Indian Association was founded by Surendranath Banerjee and Anand Mohan Bose in 1876.
It was the most significant nationalist organization before the formation of Indian National Congress in 1885. The first session of Indian Association was presided over by Ram Tanu Lahiri, a veteran of Bengal's social reform movements. The issues discussed were self-governance, education, separation of judiciary from executive functions, and greater employment of Indians in public service. The objectives of Indian Association were to promote the political, intellectual, and material advancement of the people.
It advocated for the unity of people of India on the basis of common political interest and aspirations, promotion of communal harmony, and the inclusion of the masses in the great public movement of the time.
The Indian Association expressed its solidarity and decided its merger with the Congress in December 1886.
On the 28th of December 1885, the first session of the Indian National Congress was held in Bombay with 72 delegates. More than just a political party, it was an assembly for politically minded individuals who were interested in governmental reforms. In the first 20 years, the Congress sought greater political autonomy within the empire.
However, after the 1905 partition of Bengal, it raised demands for substantial political reform and eventually for complete independence from the British Empire. The founding members of Congress included Allan Octavian Hume, Badruddin Tayyabji, Umesh Chandra Banerjee, Surendranath Banerjee, Firoz Shah Mehta, Dada Bhai Nauroji, K.T. Telang, G.K. Pillai, P. Rangaiah Naidu and Gopal Ganesh Agarkar. In 1920s, under the influence of Mahatma Gandhi, Congress was transformed from an assembly dominated by Western educated elites to a mass organization that appealed to diverse sections of the Indian public to fight together for Indian independence.
यह मन का पत्थर है वो भूखे वनवासी छोड़ो निष्क्रिय आलस छोड़ो ग्लानि उदासी यह मन का पतझर है वो भूखे वनवासी छोड़ो निष्क्रिय आलस छोड़ो ग्लानि उदासी नई कोपले आने को बन के शालों में नई कोपले कुंठित जनमन की डालों में तुम विकास कामी परिवर्तन के अभ्यासी ये शाश्वत मधुरित के अंतर्मुख शिशु पल्लव ये शाश्वत मधुरित के अंतर्मुख शिशु पल्लव नव भावों की दीप्ति भरेंगे नव ऋतु वैभव नव श्री शोभा पान करेंगे आंखें प्यासे.
Today we also remember eminent Hindi poet Sumitra Nandan Pant, who died on the 28th of December 1977. Widely referred to as the third pillar of Chhayavad, he was the first Hindi poet to be awarded the Gyanpith. A poet of nature, he was deeply influenced by Mahatma Gandhi, Rabindranath Tagore and Aurobindo Ghosh. In an ode to Gandhi from his Gyanpith winner collection, Chidambara, he said,
बापू तुमसे सुन आत्मा का तेज राशि आवाहन हंस उठते हैं रोम हर से पुलकित होते प्राण नहीं जानता युग विवर्त में होगा कितना जन क्षय पर मनुष्य को सत्य अहिंसा इष्ट रहेंगे निश्चय.
In 1960, Pant received the Sahitya Academy Award. The Indian government honored him with Padma Bhushan in 1961. He died on the 28th of December 1977 at Prayagraj, Uttar Pradesh. His childhood house in Kausani, Uttarakhand, has been converted into a museum.
और अब समय हो चला है कि उन महान व्यक्तियों को याद किया जाए जिनकी आज पुण्यतिथि. इस क्रम में सबसे पहले अनीता किसको याद कर रहे हैं?
वी आर रिमेम्बरिंग द फ्रेंच कंपोजर पियानिस्ट एंड कंडक्टर जोसेफ मॉरिस रावेल. ही इज ऑफन एसोसिएटेड विद इम्प्रेशनिज्म अलोंग विद हिज एल्डर कंटेम्पररी क्लॉड डिब्यूसी. ऑल्दो बोथ कंपोजर्स हैव रिजेक्टेड द टर्म. इन द 1920s एंड 1930s रावेल वॉज इंटरनेशनली रिगार्डेड एज फ्रांसिस ग्रेटेस्ट लिविंग कंपोजर. बॉर्न टू अ म्यूजिक loving family, Ravel attended France's premier music college, the Paris Conservatoire. He was not well regarded by his conservatory conservative establishment whose biased treatment of him caused a scandal. After leaving the conservatoire, Ravel found his own way as a composer, developing a style of great clarity, incorporating elements of modernism, baroque, neoclassicism, and his later works, jazz. He liked to experiment with musical forms, as in his best known work, Bolero, which was released in 1928, in which repetition takes the place of development. Renowned for his abilities in orchestration, Ravel made some orchestral arrangements of other composers' piano music also, of which his 1922 version of Mussorgsky's pictures at the exhibition is best known. A slow, painstaking worker, Ravel composed fewer pieces than many of his contemporaries. Among his works to enter the repertoire are pieces for piano, chamber music, two piano concertos, ballet music, two operas and eight song cycles. He wrote no symphonies or church music. Many of his works exist in two versions, first a piano score and later an orchestration. And some of his piano music, Mukesh, is exceptionally difficult to play, and his complex orchestral works require skillful balance in performance. Ravel was among the first composers to recognize the potential of recording to bring their music to a wider public. And
जी बिल्कुल, और बहुमुखी प्रतिभा के धनी, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत और छत्तीसगढ़ राज्य में जन जागरणकर्ता सुंदरलाल शर्मा की आज पुण्यतिथि है। उनका 28 दिसंबर 1940 को निधन हुआ था। वे कवि, सामाजिक कर्ता, समाज सेवक, इतिहासकार और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उन्हें छत्तीसगढ़ का गांधी की उपाधि दी गई थी। छत्तीसगढ़ में इनके नाम पर ही पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। सुंदरलाल शर्मा अपनी किशोरावस्था से ही कविता, लेख तथा नाटक आदि की रचना करने लगे थे। वे भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों को मिटाने के लिए शिक्षा के प्रचार प्रसार को आवश्यक समझते थे। वे हिंदी भाषा के साथ छत्तीसगढ़ी को भी काफी महत्व देते थे। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने हिंदी और छत्तीसगढ़ी में लगभग 18 ग्रंथों की रचना की, जिसमें छत्तीसगढ़ी दान लीला उनकी चर्चित कृति थी। पंडित सुंदरलाल शर्मा असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ से जेल जाने वाले व्यक्तियों में प्रमुख थे। 28 दिसंबर 1940 को इनका देहावसान हुआ। छत्तीसगढ़ शासन ने उनकी स्मृति में साहित्य आंचलिक साहित्य के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान स्थापित किया है।
And today is also the death anniversary of Freddie King, the American blues guitarist, singer and songwriter. He's considered one of the three kings of the blues guitar, along with Albert King, B.B. King, none of whom was a blood relative, interestingly. Mostly known for his soulful and powerful voice and distinctive guitar playing, King had a major influence on electric blues music and on many later blues guitarists.
और मराठी उपन्यासकार, आलोचक तथा पत्रकार गजानन त्रयंबक माडखोलकर की आज जयंती है। माडखोलकर अपनी काव्यमयी भाषा शैली के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। इन्होंने अपना साहित्यिक जीवन कवि समाज के एक सदस्य के रूप में कविता से आरंभ किया, लेकिन बाद में इनकी ख्याति समालोचक और उपन्यासकार के रूप में हुई। संस्कृत काव्य शास्त्र के ज्ञाता और अभिजात रसवादी होने पर भी वे आधुनिकता को सहानुभूति से देखते थे। गजानन त्रयंबक माडखोलकर की प्रमुख समालोचकतात्मक रचनाओं में विष्णु कृष्ण चिपलूषकर और वांग्मय विलास है, जबकि उपन्यासों में प्रमुख हैं मुक्तात्मा, शाप, प्रभुदूरा, डाक बंगला, चंदनबाड़ी आदि। माडखोलकर की कई रचनाओं के हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो चुके हैं।
Today is also the birth anniversary of Dame Margaret Nathalie Smith, or Maggie Smith, the British actress known for her wit in both comedic and dramatic roles. She had an extensive career on stage and screen for over 7 decades and was one of the Britain's most recognizable and prolific actresses. She received numerous accolades, including 2 Academy Awards, 5 BAFTA and 4 Emmy Awards, 3 Golden Globes also.
और मिमिक्री कलाकार नरेला वेणु माधव की आज जयंती है। वो संयुक्त राष्ट्र में अपने उत्साही प्रदर्शन के बाद अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पर पहुंचे थे। इसके अलावा टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष, जो भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक समूह है, जिसकी स्थापना जमशेदजी रतन टाटा ने की थी, उनके परिवार की पीढ़ियों ने इनका विस्तार किया और इसे दृढ़ बनाया। उनके ही अध्यक्ष रहे रतन टाटा की आज जयंती है। वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिसने यह सिद्ध कर दिया कि अगर आप में प्रतिभा है तो आप देश में रहकर भी ऐसे शिखर पर पहुंच सकते हैं जहां हर भारतीय आप पर नाज करे।
एंड टाइम नाउ टू वाइंड अप आवर प्रोग्राम परिक्रमा।
बिल्कुल, इसी के साथ मुकेश कुमार और अनीता आनंद को आज का परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की दीजिए इजाजत।
नमस्कार
जी, नमस्कार।